सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इससे पूर्व हम कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी इसका अध्ययन कर रहे थे और हमने लेखिका के हिमालय दर्शन की ओर जाते हुए जो युमथांग के रास्ते में जो उनको मनोहारी जो दृश्य दिखाई दे रहे थे, लेखिका अपने यात्रा वृत्तांत में इनका जिक्र कर रही हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ा इससे पूर्व। अब क्योंकि वह सुबह गैंगटॉक से अपने ड्राइवर और गाइड के साथ अपनी कार में निकली थी हिमालय को देखने के लिए, रास्ते दिन भर और रास्ते में तरह तरह के दृश्यों का अवलोकन किया। अब युमथांग चूंकि सिक्किम से 149 किलोमीटर दूर था, वहां पहुंचते पहुंचते लेखिका को शाम हो गई। अब रात्रि पड़ाव उनको कहीं करना था, रात्रि में कहीं उनको रुकना था, तो लेखिका ने वो रात्रि लायुंग में बिताई। और लायुंग में उन्होंने क्या किया, किस भांति उन्होंने वहां का आनंद उठाया लायुंग का, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। लेखिका ने तीस्ता नदी के किनारे बने लकड़ी के छोटे से घर में रात्रि बिताई। तीस्ता नदी थी वहां पर और तीस्ता नदी के किनारे ही एक छोटा सा घर था, वहां पर रात्रि बिताई। शीतल हवा में झूमते पौधे, बादलों से ढका चांद, वातावरण में अद्भुत शांति, मंदिर में बजती घंटियों की आवाज और साथ ही एक सुख शांति भरा सुकून। रात गहराने के साथ हिमालय ने भी काला कंबल ओढ़ लिया था। जैसे रात हुई वैसे हिमालय ने भी बिल्कुल काला काला दिखाई देने लगा था। गाने की एक तेज धुन पर जब जितेंद्र ने नाचना शुरू किया तो एक एक कर सभी सैलानियों ने नृत्य शुरू कर दिया। जितेंद्र जो कि वहां का लोकल निवासी था, वहां का मूल रूप से वहीं का रहने वाला था, अपने लोकल फोक सॉन्ग को सुनकर वो वहां पर उस गाने पर थिरकने लगा। तो जितने भी सैलानी थे उस क्षण का आनंद लेने के लिए सभी धीरे धीरे करके सभी नाचना नृत्य करना शुरू कर दिया। 50 वर्षीय मणि ने भी ने ऐसा नृत्य किया जो कुमारियों को भी मात दे सकता था। उसकी सहयात्री, लेखिका के सहयात्री मणि, ऐसा उनकी आयु 50 वर्ष हो चुकी थी और उस आयु में भी उन्होंने ऐसा नृत्य किया, ऐसा डांस किया कि उसके सामने कम उम्र की युवतियां भी फेल थी। लायुंग की सुबह तीस्ता नदी की भांति शांत थी। यहां के लोग पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार करते हैं। लेखिका को यहां के पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे थे, पर आजकल बढ़ते प्रदूषण के बीच बर्फ गिरनी लगातार कम होती जा रही है। लेखिका ने कहा कि यह जो जगह है वो किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन आजकल जो प्रदूषण बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो प्राकृतिक जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बर्फ गिरना धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेखिका को एक सिक्किमी युवक ने बताया कि कटाव के स्थान पर निश्चित रूप से बर्फ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि पर्यावरण हमसे रुष्ट हो चुका है, प्रकृति हमसे रुष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका जो ओरिजिनल जो स्वरूप है वो चेंज होते जा रही है। परिणाम स्वरूप जहां पर पहले बर्फ गिरती थी, प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण की वजह से उस प्रकृति में बदलाव हुआ और आज वहां पर बर्फ गिरना बंद हो गई है। लेकिन लेखिका को एक वहां के स्थानीय युवक ने बताया कि आपको कटाव में बर्फ मिल सकती है। तो या लेखिका आगे की यात्रा, कटाव की यात्रा के लिए सुबह होने के बाद कटाव की यात्रा प्रारंभ किया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ कटाव के खतरनाक रास्ते का सफर शुरू हुआ। पहाड़, पेड़, आकाश और घाटियां सभी बादलों से ढकी। बादलों को चीरकर आगे बढ़ती जीप का सफर भय और रोमांच की अनुभूति करा रहा था। जगह जगह चेतावनियां के बोर्ड हमारी खामोशी और बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे भयानक जगहों से कार गुजर रही थी और चेतावनियां लिखी थी, कॉशंस लिखे हुए थे, उससे अंदर बैठे हुए, कार के अंदर बैठे हुए सभी सैलानी डर की अनुभूति कर रहे थे, डर महसूस कर रहे थे। धुंध छटने के साथ ही जितेन कहने लगा, दूसरे दिन की यात्रा, एक दिन की यात्रा तो उनको वहां पर बितानी पड़ी, ठीक है, एक दिन की यात्रा उनको लायुंग में बिताना पड़ा रात्रि, फिर दूसरे दिन की यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया। धुंध छटने के साथ ही जितेन कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो मड़ी, उनकी जो करीबी जो मड़ी थी, जो उनकी सहयात्री थी, वो कहने लगी कि नहीं, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है यह कटाओ, क्योंकि मड़ी स्विट्जरलैंड की यात्रा कर चुकी थी। कटाव के करीब आते ही बर्फ के पहाड़ दिखने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन पर बर्फ छिड़क दी हो। जितेन बता रहा था कि यह रात में गिरी हुई ताजी बर्फ है। कटाव के पास पहुंचते ही ना पहाड़ दिखने लगे थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन पर बर्फ छिड़क दी हो। जितेन बता रहा था कि यह रात में गिरी हुई ताजी बर्फ है, चारों ओर साबुन के झाग सी बिखरी बर्फ दिख रही थी। अब सारे सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूद रहे थे, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। कई सैलानी यह सब कुछ कैमरों में कैद करने में जुटे हुए थे। लेखिका भी बर्फ पर लेटना चाहती थी, पर उसके पास बर्फ पर पहनने वाले जूते न थे। जूते उसके थोड़ा घुटने तक के जूते होते हैं, थोड़ा ऊपर तक आते हैं, जिससे कि बर्फ उनके जूतों में न घुस पाए, इस तरह के। लेकिन लेखिका के पास वाले जूते नहीं थे। इधर कटाव पर एक भी दुकान नहीं थी कि लेखिका वहां से जूते खरीद सके और उस बर्फ का आनंद ले सके। लेखिका ऐसे दृश्य को अपने अंदर उतारे जा रही थी और दिव्यता में खोती जा रही थी। इसके बाद लेखिका उसके कटाव की यात्रा के बाद आगे बढ़ी और क्या कहती है, लेखिका की सहेली मणि कह रही थी कि हिमशिखर पूरे एशिया के जल स्तंभ हैं। प्रकृति इनमें अद्भुत तरीके से जल संचित कर लेते हैं। ये जल स्तंभ हैं, जल के भंडार हैं। प्रकृति इनमें एक अद्भुत तरीके से, प्रकृति का भी एक देखो तरीका, किस तरीके से जल संचय करती है। अगर अगर लिक्विड के रूप में हो तो बहकर नदी समुद्र में मिल जाए वो खराब हो जाएगा, तो प्रकृति ने भी एक नया तरीका से जल इकट्ठा करती है, बर्फ के रूप में जल संचय कर लेती है। और गर्मियों में यही बर्फ पिघल कर लोगों को प्यास बुझाती है कि एकदम से सारा पानी समुद्र में ना बह जाए, इसलिए प्रकृति हम लोगों के लिए बर्फ रूप में पानी इकट्ठा करती है। और जब गर्मी पड़ती है तब पानी की कमी हो जाती है, तब उस पानी की भरपूर्ति के लिए बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती, जिससे हमारी प्यास बुझती है। मड़ी ने नदियों के ऋण को याद कर सिर नवा लिया। यहीं से कुछ दूर पर चीन की सीमा है। लेखिका ने वहां का -15 डिग्री सेल्सियस तापमान जानकर फौजी से उनकी तकलीफों की बातचीत की तो उसने बताया, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। लेखिका ने सैनिकों और यहां के लोगों के जीवन की कठिनाइयों की अनुभूति कर उदास हो उठी। यहां से जहां पर लेखिका पहुंच चुकी थी वहां से चीन की सीमा है, वहां से चीन की सीमा लगती है। एक फौजी से लेखिका ने पूछा, उनसे बातचीत किया तो बताया कि यहाँ की जो तापमान है -15 डिग्री है। तकलीफों के बारे में लेखिका जान रही थी, पूछ रही थी, बातचीत कर रही थी। फौजी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, आप लोग चैन से सो सकें इसलिए हम लोग यहाँ पे पैरा दे रहे हैं। ये बात को सुनकर लेखिका बहुत भावुक हो गई। अब कटाव तक लेखिका पहुंच गई, अब हिमालय को भी देख लिया, अब वापसी कर रही है लेखिका। लेखिका ने लौटते हुए युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रियुता और रूडेडेंड्रो के फूल देखे। जितेन बता रहा था कि 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। अब चौड़े होते रास्ते पर खतरे का एहसास कम हो रहा था। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जा रही थी तो रास्ते सकरे थे, होते जा रहे थे, जो बहुत ही खतरनाक और भयानक थे, जिनको अगर नीचे का दृश्य अगर देख लें तो कोई भी इंसान डर सकता था। लेकिन जब वापसी में ड्राइवर गाड़ी ला रहा था, तो धीरे धीरे चौड़े रास्ते चौड़े होते जा रहे थे और कम खतरनाक होते जा रहे थे। युमथांग में एक सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूं। लेखिका को जानकर अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर खुश हैं। स्वतंत्र रजवाड़ा रहने तक यहां का पर्यटन उद्योग विकसित नहीं हो पाया। अब तो लगता ही नहीं कि सिक्किम कभी भारत का अंग नहीं था। इसकी विशेष जानकारी मैं आपको सिक्किम के इतिहास के बारे में विशेष जानकारी मैंने आपको हैंडआउट में दिया है, कृपया उसको जरूर पढ़ें। इसी बीच एक पहाड़ी कुत्ते को देखकर मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते हैं जो भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। एक पहाड़ी कुत्ते को देखकर जो मणि उसकी जो सहेली थी, सहयात्री थी, लेखिका की, उन्होंने कहा ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं और ये सिर्फ भौंकते तब हैं जब चांदनी रात होती है, तब भौंकते हैं। वापसी आते समय, लौटते समय लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट दिखे। लौटते समय जितेंद्र ने बताया कि यहाँ के एक पत्थर पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। यही गुरु नानक की थाली से कुछ चावल गिर गए थे। अब उन्हीं जगहों पर चावल की खेती होती है। उसने खेदुम नामक स्थान के बारे में बताया जहां गंदगी फैलाने वाला मर जाता है। मतलब वहां पे स्वच्छता का इतना ध्यान रखते हैं कि उसको स्वच्छता को अध्यात्म से जोड़कर देखना गया। स्वच्छता अर्थात यदि कोई गंदगी फैलाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। स्वच्छता को इतना ज्यादा महत्व देते हैं सिक्किम में। यहाँ 1 किलोमीटर के एरिया में देवी देवताओं का निवास है। उसने यह भी बताया कि गंगटोक का असली नाम गंतोक है, जिसका अर्थ है पहाड़। गंतोक का क्या अर्थ है? पहाड़। लेखिका यह देख रही थी कि नए नए स्थानों की खोज के लिए अब भी नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। साथ साथ में लेखिका यह भी देख रही कि नए नए स्थान तक अभी पहुंचना था। गंगटोक अभी अभी भारत में मिला है, सन 1975 में भारत में इसका विलय हुआ है। तो लेखिका कह रही थी अभी भी वहां पर, चूंकि फौजी छावनियों में तब्दील है अभी भी सिक्किम का बहुत सारा एरिया, लेकिन नए नए जगहों पर पहुंचने के लिए नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। इसी असमाप्त खोज का नाम ही तो सौंदर्य है। उसकी जीप आगे बढ़ती जा रही थी। धन्यवाद। ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ।